श्रोताओं आदाब नमस्कार, शास्त्रीय अकाल। मैं मोहम्मद शाहनवाज, साज अहमद मोबाइल वाणी से। आज मेरे साथ हैं एक मजदूरों के हमदर्द, मजदूरों की बात रखने वाले, मजदूरों की बात को जमीन से कोर्ट हर तरीके से उठाने वाले, मजदूरों की लड़ाई लड़ने वाले समाज सेवी नरेश कुमार सेन जी, जो कि मजदूरों के लिए आज जो है मजदूरों की बात करेंगे। जैसे उन मजदूरों का शोषण हो रहा है, जो केजरीवाल सरकार ने जो कुछ छूटे दी हैं कि हमने कारखाने और फैक्ट्रियां खोल दी गई हैं, इसके विषय पे आज हम बात करेंगे। नरेश कुमार जी, स्वागत है आपका साज अहमद मोबाइल वाणी में।
जी शहनवाज जी नमस्कार।
नमस्कार नमस्कार।
और साझा वाणी मोबाइल,
साझा मंच मोबाइल,
साझा मंच मोबाइल वाणी का भी बहुत बहुत धन्यवाद, जो मजदूरों की आवाज यहाँ दिल्ली में ही नहीं पूरे देश में पहुँचाती है।
जी धन्यवाद धन्यवाद। नरेश जी, आप ये बताइए कि जो दिल्ली सरकार ने अभी एक सोमवार को गाइडलाइंस दी थी कि हम कारखाने और फैक्ट्रियां खोल रहे हैं और जो बड़े बिल्डिंग हैं जो इनका काम है वो भी खोल रहे हैं, उस पर क्या कहना है आपका?
देखिए शहनवाज जी, केजरी सरकार ये एक सिर्फ ये जो टीवी पे आकर के झूठी कहानी बताते हैं और झूठी यानी के सिर्फ पूंजीपतियों को फायदा करते हैं ये लोग
जी।
और आज दिल्ली में दो सरकार चल रही है, एक तो उपराज्यपाल महोदय की सरकार चल रही है बनाम बीजेपी, और दूसरी सरकार चल रही है केजरीवाल सरकार
जी।
तो हाँ, तो इन दोनों सरकारों का कार्य सिर्फ वही है पूंजीपतियों को लाभ पहुंचाना। और अभी लॉकडाउन से पहले जब यहाँ से जो कंस्ट्रक्शन का काम करने वाला हो या फैक्ट्री के अंदर मजदूर काम करने वाला हो, काफी पलायन हुआ यहाँ से। यहाँ से कम नहीं 8-9 लाख से भी ज्यादा होंगे जो डीटीसी में जिस इन्होंने सफर करके गए उसका आंकड़ा है ये। बाकी वैसे तो जो स्वयं अपने वाहनों से गए और अन्य साधन से गांव चले गए तो काफी लोग यहाँ से पलायन करके, और जो इन्होंने
सरकार ये कहती है कि हमने लोगों से एक जनता से अपील की थी कि आप कहीं नहीं जाइएगा, हम आपकी पूरी मदद करेंगे। दिल्ली सरकार मुख्यमंत्री जी ने वादा किया था मजदूरों से, आप बता रहे हैं कि मजदूर कितने मजदूर बाहर चले गए जो हमारे दिल्ली से छोड़ गए? वो
जो हमारे दिल्ली से छोड़ गए कम से कम नहीं 12 लाख मजदूरों का आंकड़ा जो है वो है जो दिल्ली से पलायन कर गया।
अच्छा
हाँ, जिसमें कि इनका अपना कुछ आंकड़ा है वो तो 8,07,000 कुछ ऐसे बता रहे हैं जो इनका अपना आंकड़ा है दिल्ली सरकार का, परंतु ये आंकड़ा ज्यादा है इससे।
अच्छा।
और जो इन्होंने अभी लॉकडाउन में रियायत दी है भाई 10 लाख हमने कर दिया, एक तो कंस्ट्रक्शन का कार्य, दूसरा जो 4 दीवारी के अंदर फैक्ट्रियां हैं वो इंडस्ट्रियल एरिया में आती है, के अंदर 19 ऐसे क्षेत्र इंडस्ट्रियल एरिया हैं जो संगठित हैं और 22 ऐसे क्षेत्र इंडस्ट्रियल क्षेत्र हैं जो संगठित हैं। अब इनमें जितने भी काम बहुत सी फैक्ट्रियां ऐसी हैं उनके 4 दीवारी है नहीं, उनके फैक्ट्री जरूर लगी हुई है पर उनके चारों तरफ 4 दीवारी नहीं है। और हाँ, तो वहाँ पे तो मजदूर को वैसे भी खतरा है काम करने के अंदर। और दूसरी बात, जो आज कच्चा माल है हमारा, जैसे हमें आयरन लाना है, स्टील लाना है, वो तो हमें मंडियों से वहीं से मिलेगा ना, तो जब दुकानों से जब वो हमें नहीं मिलेगा तो हम फैक्ट्रियां चलाएंगे। दूसरी है हार्डवेयर, जहाँ पे हम टूल वगैरह लेते हैं, मशीनों में लगाते हैं उनके लिए, वो हम कहाँ से लेंगे? और हाँ, और तीसरा, अगर हमें कोई चीज रिपेयर करानी होगी, वर्कशॉप नहीं खोली उनको, नहीं इन्होंने कहा वे वर्कशॉप भी बंद है अभी तक, तो ये काफी दिक्कत है। और तीसरी बात है ऑक्सीजन, जो हमें कम से कम 80% यूज होता है
जी,
वो कहाँ से लाएंगे? और प्लास्टिक का जो माल होता है वो कहाँ से लेके आएंगे? तो इनमें काफी जो फैक्ट्रियां हैं वो प्लास्टिक के का कार्य भी करती हैं, जिसमें आपका मेडिकल का भी कार्य हो गया और बाकी आपकी मशीनरी में और जो दिनचर्या में काम आती हैं वो प्रोडक्शन बनते हैं, तो वो कहाँ से? और चौथी बात, मजदूर नहीं है, ये फैक्ट्रियां कहाँ से चलेगी
जी?
हाँ, ये तो सबसे पहले सरकार को ये करना था कि भाई जो इनसे संबंधित हैं, वर्कशॉप है, हार्डवेयर है, जो कच्चे माल की जो दुकानें हैं, उनको खोलना चाहिए था इनके साथ ही
जी।
तो ये कैसे खुले, ये एक बहुत बड़ी समस्या है आज फैक्ट्री चलाने वाले के लिए भी और वहाँ पे जो मजदूर कार्य करता है उसके लिए भी। और तीसरी है परिवहन की, परिवहन है नहीं। और आपने देखा होगा सहनवाज जी अभी
जी।
मजदूर अपनी फैक्ट्रियों में जाने के लिए वहाँ पे इतना जुम इकट्ठा हो गया, मैंने स्वयं देखा भजनपुरा इन स्टैंडों पे मैंने देखा कि काफी लोग एक साथ, और वहाँ आदमी जैसे हम कहते हैं भाई हमें दो गज की दूरी बना के रखनी है, वहाँ तो इस तरह से भाग रहे थे बसों के अंदर जैसे कभी जिंदगी में ये मिलेगा ही नहीं। तो ये सरकार को पहले पूरी व्यवस्था करनी चाहिए थी, ये तो कोरोना तो ही सरकार फैलवाती है। और
अच्छा।
आज स्थिति, आज दिल्ली के अंदर स्थिति ये है कि आदमी बहुत ही लाचारी में है, और ये झूठे लोगों की सरकार है, सिर्फ पूंजीपतियों को फायदा पहुंचाने वाले ये लोग हैं जो सत्ता में आज बैठे हैं, ये सिर्फ एसी में बैठ करके फैसला करते हैं, इनको जमीनी हकीकत का इनको कुछ नहीं पता है
जी।
हाँ,
दिल्ली सरकार ने एक नई गाइडलाइंस, नई गाइडलाइंस आई है दिल्ली सरकार की कि अगर आपको शराब लेनी है, शराब पीनी है, तो आप ऑनलाइन मंगा सकते हैं, एक ऐप बनाया है, तो शराब ऑनलाइन बिक रही है और शराब आप जहाँ चाहें वहाँ आ सकती है आपकी। मगर दिल्ली सरकार की तरफ से जो ई कूपन, यानी कि जिसको ई कूपन कहा जाता है, जिसको जिन लोगों के पास दिल्ली में राशन कार्ड नहीं है, हम बराबर इस मुद्दों पर बात हो रही है कि उन लोगों को अभी तक राशन नहीं मिला, अप्रैल का महीना चला गया, मई चला गया, आज जून की 2 तारीख हो चुकी है, अभी तक उनको राशन क्यों नहीं मिला।
हाँ देखिए सहनवाज जी, इनकी जितनी भी योजनाएं होती हैं वो सिर्फ कागजों में ही है, जमीनी पे कुछ नहीं। इन्होंने पहले कहा था कि हम ई कूपन से 5 किलो राशन देंगे, जिसमें 1 किलो चावल और 4 किलो गेहूँ
जी।
तो 4 किलो गेहूँ आदमी वहां से पूरा नहीं मिलता, वो 4 किलो भी उसको साफ सूख करोगे तो 3 किलो रह जाएगा
जी।
और 3 किलो में से भी जब आप पिसाई करा के लाओगे चक्की से तो 2.5 किलो रह जाएगा। अब आप बताइए सहनवाल जी, या ये केजरीवाल सरकार बताए कि वो 2.5 किलो जो गेहूं आप दे रहे हैं वो खाएगा केजरी, और उसके साथ में हमारे तेल भी चाहिए और मसाला भी चाहिए, गैस भी चाहिए, उसका कहाँ से होगा वो? मजदूरों के पास पैसा नहीं है, फैक्ट्री वाले पैसे देते नहीं है
जी।
तो वो अपना जीवन यापन कैसे करे? ये तो मजदूरों के साथ में खिलवाड़ किया गया, चाहे वो केंद्र की सरकार हो, चाहे ये राज्यों में किसी भी केजरीवाल सरकार हो या अन्य प्रांतों में भी ऐसा ही हाल है आज मजदूर का। और आज इन्होंने कहा कि हम मजदूर को 10 किलो राशन देंगे, जो तो 10 किलो राशन क्या हो, 5 किलो भी नहीं मिला आज तक। और दूसरी घोषणा कर दी कि हम शराब को ऐप द्वारा जो जहाँ पे भी ग्राहक होगा वो उस पर लोड करे, और शराब जब आप शराब आप दे सकते हैं ऐप के द्वारा, तो ऐप के द्वारा आप राशन भी तो दे दो ना मजदूरों को,
होम डिलीवरी।
हाँ जी
जी।
हाँ तो ये क्यों नहीं किया? ये तो एक बहुत बड़ा विश्वासघात है, और मैंने पहले भी आपके इंटरव्यू के माध्यम से यही कहा था कि जो पहले ई कूपन से जो राशन आया था वो काफी स्कूलों में पड़ा सड़ गया, आज तक उसकी कोई जाँच नहीं हुई भाई। ये इनको जो वास्तव में प्रवासी मजदूर थे, जो जिनके राशन कार्ड नहीं थे बेचारे, उनके लिए वो राशन आया था, उनको नहीं मिल पाया आज तक ना। तो ये तो एक वो है, लोग ये केजरीवाल सरकार सिर्फ आज क्या है कि वोटों की राजनीति कर रहे हैं, क्योंकि अभी आप देखोगे आने वाले समय में उत्तर प्रदेश में 5-6 राज्यों के भी चुनाव है, उनमें भी ये काफी इस तरह की ये है मजदूरों को एक बेवकूफ बनाने के लिए, ये पूरे हिंदुस्तान के अंदर इन्होंने इस तरह का ये अभियान चलाया है कि मजदूरों को कैसे मूर्ख बनाया जाए। परंतु मजदूर अब जागृत हो चुका है, आने वाले समय में इन लोगों को जान चुका है, और इनके झांसे में भी नहीं आने वाला है।
जी जी जी। हाँ तो जनता साझा मंच मोबाइल वाणी में आप बहुत बहुत आपका शुक्रिया। ये थे हमारे साथ नरेश कुमार सेन जी, जो कि जनता की आवाज एनजीओ के सचिव हैं, राष्ट्रीय सचिव हैं। बहुत बहुत धन्यवाद नरेश जी आपका।
जी जी, धन्यवाद सहनवाद जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका।